कालिए दाहे ते नागपत्नीगण बोले छेन कस्यानुभाव अस्मन देह विद्महे तवान हिरेणु स्पर्शाधिकार कालिय स्वभाग्य की छिलो जे लक्ष्मी ब्रह्मा संकट पर्यंत से कृष्ण प्रसाद पाए नहीं आर तार स्वभाव की छिलो तार सौभाग्य की छिलो एवं केनो एई सौभाग्य प्राप्त होलो तार कारण बोलो बोलते पारबे तो धीरे धीरे बोलबो जाते आमी सुनते पाए बुझे मैंने तड़ातड़ी ना
ओम गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः
हिंदी तो बोलो ये तो सबली बुझे
सर्वप्रथम अस्मदीय परमार्थ तत्व गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टभुत सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वाहन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टभुत सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तृतीय चरण जुगल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद समस्त वैष्णव जन चरणों माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम है। अभी अभी गुरु जी ने आज्ञा दी है आगे कालिये बहुत काल तक यहाँ वृंदावन में यमुना के सदीप भक्त में निवास करता रहा उनके परिवार आदि सहित ले रहे हैं। और कालिये पहले रमणवती में ही रहता था परंतु जब स्वभरिमणि तपस्या करते रहे उस समय गौरव भूखे प्यासे होकर एक मछली को पकड़ करके खा गया तो मछलियों के बिल मिलाने से सोभन मुनि ने गौरव को अभिशाप दिया कि गौरव यहाँ आएगा कोई प्राणियों को कष्ट देगा और विशेष कर मछली खाएगा तो तुम्हारा प्राण चला जाएगा। जिन्हें अभिशाप दी तब से गौरव उस स्थान को वर्जन किया जाने वहां कभी आए और उसी का परिणाम हुआ जो कि कालिया आकर के वहां निवास किया क्योंकि कालियों को संसार में एकमात्र सुरक्षित स्थान वही कालिया घर मिला था। एक समय जबकि वरुण और नागों के बीच में
बेसी लंबा प्रश्न संख्या पे बोलो
कला विवाद था तब उस समय कालिया ने देखा कि गरुड़ के बाएं पंख के एक झटके से झपट से उनका प्राण प्रत्यय मुड़ने जा रहा था। तब कालिया आकर के संधान किया कि यही एक निरापद स्थान है गरुड़ वहां गए हैं इसलिए अपने परिवार से आकर के यहाँ निवास किया। परंतु कालिया के जीवन में कभी कोई सौभाग्य तो नहीं था उनकी पत्नियां जो थी बड़ी भक्तिमती थी कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती थी और यह अनुराग ये भक्ति होने का कारण जो कि उनको लक्ष्मी जी का संग मिल गया। ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी जी जब बेलवन में तपस्या करती रही पुस्तकालय कदरिया वहां जाया करती, उनके साथ में रह करके और उनके अंदर में कृष्ण के प्रति अनुराग भावना बढ़ती चली गई। अली और कदरिया जबकि अलियों को बहुत कहती, बहुत मनाती, बहुत अंदर विनय करती कि कृष्ण भगवान है उनको मार लो, पर अली कभी नहीं मानता था, अपने घमंड में ही रहता था। फिर भी अली पत्नियां कभी उनको जबरदस्ती नहीं किया कुछ सुनाने पर भी, और अली ने कभी अपने पत्नियों से विरोध ही नहीं किया, भले ही वो भक्ति करती है भजन करती है ठीक है, ये कृष्ण को नहीं मानते कोई बात। तो इस प्रकार की बातें, और इससे आगे जब कृष्ण ने 20 जन को संशोधित करने के लिए सखाओं से कहा कि देखो यहाँ कभी वरुण ने अमृत रखा था या गोद्र ने अमृत है या नहीं मैं ढूंढ के आता, इसलिए तुम लोग थोड़ा दूर में रहो मैं आता, ऐसे छठ गात्री करके सखाओं को दूर हटाए और स्वयं पानी में जो कूदने जा रही है सखाओं को नहीं बताया। कोई जगह कोई प्रसंग है श्री को स्वामी बात नहीं तो गेंद की बात नहीं, कहीं अमृत की बात नहीं, कहीं बोले हम ऊपर चढ़ करके अब अलीगढ़ का दमन करेंगे, इस तरह से कह करके जबकि उसमें छलांग लगाई और अलीगढ़ का दमन किया। इसमें अली और पत्नियों ने जो जब अली का दमन हो गया खून की वृद्धि होने लगी और प्राण जाए जाए अवस्था हो गया, ऐसे समय में काली पत्नियां कहती हैं तस्यां भावस्य नदेव वेदमहे तवां हि देव स्पर्शाधिकार आर्त ब्रह्मा श्री लक्ष्मी जी जिनकी इतनी तपस्या कर रहे हो और करती है उनके आपके चरण रेणु को पाने के लिए सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, परंतु इसने कौन सा ऐसा सौभाग्य किया, कौन से जन्म में कौन सा पुण्य आचरण किया जिसके हम शरण आज आपके चरण कमल को अपने मस्तक पर प्राप्त किया, विश्व भर होकर के आपने उनके मस्तक पर नृत्य किया, तो ये सौभाग्य किससे हुआ, केवल काली पत्नियों के संग से। इसलिए गुरु जी ने कल भी कहा था कि कोई व्यक्ति भले ही वैष्णव साधन दंडधारी हो शासन करते हो उनका अनुशासन भी महान कृपा होती है और अनुग्रह होता है, जीवों के प्रति महान कृपा है, जैसे भगवान ने काली पर किया है। तो काली पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु आपने जो दंड दिया है यह उचित हुआ है, न्याय जो दंड ये उचित दंड दिया है और इस उचित दंड का फल भी इसने प्राप्त कर लिया और इसकी प्राण दान दे रहे जो कि हम इसके सहारे से हम जीते हैं जाते हैं हम आपकी सेवा में और भक्ति में, इसलिए प्राण की भिक्षा मांगे। तो यहाँ पर उनको जो संग मिला तो काली पत्नियों के संग से ही उनको भक्ति मिली और कृष्ण के प्रति जो उनकी भावना बन गई और भगवान ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए कहते हैं कि यह संगीत का प्रभाव है या संगीत का ही विशेष महत्व है। कोई भी ऐसे साधु गुरु वैष्णवों का संग करता है, वैष्णवों का अनुशासन और वैष्णवों की कृपा स्नेह दोनों ही बराबर है। जैसे नारद जी ने जमराज पर कृपा की और उन्हीं के कारण भगवान कृष्ण ने उनका स्वयं प्रेम के बंधन में रहकर उनका बंधन मोचन किया और उनको भक्ति दिलाई। इसी प्रकार जब तक साधु संतों की गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान कभी भी कृपा नहीं करते। कोई व्यक्ति ऐसा चाहते हैं सोचते हैं कि हम गुरु वैष्णव की सेवा क्यों करें, क्यों उनके अनुशासन स्वीकार करें, क्यों हम गाली गलौज सुने और क्यों उनके अधीन बन करके रहे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे अकेले रहेंगे, हम भजन कर लेंगे कृष्ण को पालेंगे, गुरु जी ने तो हरे नाम दिया हम हरे नाम कर लेंगे, पर कश्मीर काल में भजन नहीं हो सकता है। जैसे कि वृंदावन में घूमने वाले बहुत से साधु ऐसे घूम रहे हैं जो कि भागवत जी ने कहा है जितने भी अनपढ़ व्यक्ति होते हैं और ज्ञान दुर्बल व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही लोग सब भटकते हैं और इधर उधर घूमते हैं। यदि बुद्धिमान है, विवेक है, कैसे भी गुरु वैष्णवों का शासन स्वीकार करके उनके कृपा के लिए यदि मरे हुए हो तो जरूर भगवान की एक दिन कृपा होगी, अन्यथा संभव है। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि हम अकेले भजन कर लेंगे और एकांत में रहकर के भजन कर लेंगे, हमें वैष्णव संघ गोष्ठीबद्ध भजन की कोई जरूरत नहीं, इनके संगमा और इनकी सेवा की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं समझे। सबसे बड़ी भूल है जीवन की जब ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि कैसे भी हो गुरु वैष्णवों के संघ में रह करके भजन करना है। भजन तो हमसे क्या होता है, कुछ भी नहीं, परंतु उनके कृपा रूपी जो किरण, यही कृपा किरण के द्वारा ही हम संजीवित रहते हैं, अन्यथा हम कहीं अंधेरे में अंधकार में व्यर्थ हो चले जाते। इसलिए कहिए कि ये जो कथाएं हैं, इन्हीं कथाओं के द्वारा ये पाया जाता है कि जीवन में भजन करना है तो संघ ही प्रधान, संघ को छोड़ करके जाएंगे तो हमारे जीवन में सर्वनाश है।
कालिय की पत्नियों ने कहा, प्रार्थना की कृष्ण की, पहले तो कृष्ण को फेटे में बांधकर उनके हृदयस्थल में
दफने लगे,
काट रहा था बीच से, तब कालिय की पत्नी ने कहा ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसा पति हमको नहीं चाहिए। उस समय कुछ नहीं बोली, किंतु कृष्ण के ब्रह्मांड के भार से और उनके नित्य से उसके सब फणों से वो रक्त उगलने लग गया। मुझे गरुड़ से भी युद्ध किया किंतु इतना तो बलवान नहीं। ओहो, हमारी पत्नियां जिनकी बात करती थी वही कृष्ण पर ब्रह्म तो नहीं है, तो वो शरणागत हो गया कृष्ण के मन ही मन में। जब जब नाग पत्नियों ने देखा ये शरणागत हो गया, तब वो प्रार्थना करने लगी कृष्ण से, प्रभो अब इसे जान से मत मारिए, अब इसको मारने से हम लोग विधवा हो जाएंगी और दूसरे सर्प हमको अपनी पत्नी बना लेंगे, तब हमारा पातिव्रत धर्म नहीं रहेगा और वो भजन करने नहीं देंगे, वो आपके विरोधी होंगे, ये अंततः अब तो विरोधी नहीं है, इसलिए कृपा करके इसको छोड़। यहां तक तो हुआ ये काली का, किंतु सौभाग्य क्या है जो गोपियां कह रही हैं, काली ने कौन से जन्म में कौन सा तपस्या किया था, कौन सा जप किया था, कौन सा दान किया था, किस तीर्थ में स्नान किया, जिसके फल से इसको ऐसा सौभाग्य हुआ, तो वो सौभाग्य क्या था? भगवान ने, भगवान के हृदय में गर्भ, कौन ऋषि, लात मेरे छिले ने कर, भृगु ने लात मारी और उसका चरण का चिन्ह अपने यहां पर धारण कर लिया। लक्ष्मी जी ने तपस्या की और उनको हृदय में दक्षिण रोमावली के रूप में धारण कर दिया, किसी के ऊपर में अपने चरण चिन्ह को नहीं दिया, अपना चरण चिन्ह कभी किसी को नहीं दिया, लक्ष्मी जी को भी नहीं, ब्रह्मा जी को भी नहीं, शिव को नहीं, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान आज कालिये के ऊपर में अपना चरण चिन्ह दे करके कह रहे हैं कि कालिये अब तुम निकल करके रमण द्वीप में चले जाओ, तुम्हारे ऊपर में चरण चिन्ह दिए हैं, अब गरुड़ तुमसे शत्रुता नहीं करेंगे। ये तो हुआ सौभाग्य, किंतु सौभाग्य किस लिए हुआ? तीर्थ महाराज जी ने बतलाया उसकी पत्नियां भक्त थी और अपने पत्नियों को बाधा नहीं देता था, कथा सुनता था किंतु पालन नहीं करता था, ये दोष था, अतः अपनी पत्नियों के कारण हुआ। किंतु ये भी स्मरण रखना चाहिए, दिवाय एक की मात्र निवासेन हरि भक्ति प्रजाय, ब्रजमंडल में मथुरा मंडल में यदि एक रात भी निवास किया जाए तो उसे हरि भक्ति होती है। और ये कितना युग? 96 युग वहां पर था, तो इसको भक्ति क्यों नहीं होगी? 96 युग और वो भी ब्रज में, कहा वृंदावन में रहा, तो इसका सौभाग्य भक्ति नहीं होगी? जरूर तो भक्ति होगी। दूसरी बात, कृष्ण ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी से समाधि में बोलते होंगे, प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा इत्यादि को शंकर जी को कोई आदेश नहीं दिया, किंतु कालियों को आदेश दिया, बोले बातचीत कर रहे हैं, अब जाओ हमारी कृपा हो गई, हमने चरण चिन्ह दे दिया, इसलिए अब तुम लोग रमणक द्वीप में चले जाओ, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़े। और एक बात, विषयी मित्र से शत्रु यदि भगवान का भक्त हो तो उसे भक्ति हो जाती है। कालिये गरुड़ जी को अपना शत्रु मानता था, किंतु वो तो थे भगवत भक्त, भगवान के वाहन निजे परिकर थे, इसलिए वो ऊपर से शत्रुता होने पर भी कभी भी कालिये का कल्याण नहीं चाहते, जो ये मर जाए इसका अकल्याण हो, इसलिए उनकी कृपा से जे इसके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाए, भक्त हो जाए, क्योंकि परम भक्त है, भागवत है, इसलिए कालिये के ऊपर में ऐसी भगवान की कृपा हुई। इतने सब कारण हैं।
Topic of tonight is the wives of Kaliya Prit, Kasanuvaro Shadanirvindhi, Paramdinen Svatsadikara, Yagvanchet, and Lalan Acharata Tapo, Vihaya Kamas, Chirat Dridvrata. They asked, we don't know what good activities Kaliya has performed that he could get the foot dust of the Sri Krishna upon his head, because even Lakshmi, despite performing severe austerities for a very long time, she could not get that same good fortune. There was Sri Krishna when he jumped into the place, the section of the Yamuna where Kaliya was living. Kaliya bound Krishna in his coils and continuously beat him. At that time, the wives of Kaliya were thinking, our husband is so much against the Lord, if he died, it would be quite good. But inside Sri Krishna, there are so many universes. Therefore, Kaliya felt that weight upon his head, and he realized this person is even stronger than Garuda. It must be that same Krishna, the absolute truth, whom I had heard about from my wives in Harikatha. Thus, he surrendered completely to Krishna. Meanwhile, at first the wives of Kali were praying for his demise, but when they saw him surrender to Krishna, they prayed, "Please do not kill our husband, because if our husband is dead, we will become widows. Then so many other lusty snakes will marry us by force. Then our religious principles as being chaste women will be destroyed, and other snakes will perform hindrance to bhajan." Kali was not a hindrance to their bhajan. Therefore they were wondering, what mantra did Kali chant? What donation did he give? Which holy places did he take bath? And what austerities did he perform that he could get the full dust of Krishna upon his head? Other people have given their foot on Krishna, like Bhrigu Rishi. He was looking who is the most person worthy of worship. Therefore he kicked Narayan in the chest, and that foot mark was on the chest of Narayan even today. Lakshmi, she always holds the feet of Sri Krishna in her lap, and she resides on the chest of Krishna in the form of a lion. But we never heard of Krishna giving his footprint upon the head or the body of anyone. Nor Shiva got that good fortune, nor did Brahma. Therefore Krishna, he put his own foot stamp on the head of Kali and sent him to Ramanadweep, present day food city. Therefore Kali, he heard so much Harikatha from his wives, but he was not against Krishna, only he didn't do anything after he heard Harikatha. But residence in Vrindavan is so powerful. Harivakti Prajati, even one night in Mathura Mandal, one is guaranteed devotion to Sri Hari. But Kali resided there for so many Divi Yugas, 96 Yugas. Therefore, that is one of the reasons why Kali got the mercy of Sri Krishna. He got so much mercy that Krishna actually talked with him and gave him order to go to Fiji. Therefore, Krishna had never talked with Brahma or Shiva. In fact, they only saw him in meditation, but Krishna never conversed with them. Therefore, another reason is, even though Kali was thinking Garuda is my enemy, actually it is not true. That Kali, even though he thought Garuda is my enemy, Garuda never thought that Kali was my enemy. Everything Garuda did was for the auspiciousness of Kali. Therefore, even making enmity with a devotee is a cause of devotion. Therefore, Garuda was always thinking of Kali's welfare. Therefore, he struck him with his wing. This was another cause of the reason why Krishna gave his footprint on the head of Kali.
माधुर्य कादंबिनी हिंदी बोलिस तो हमें बांगला और लाल माधुर्य कादंबिनी श्री चक्रवर्ती ठाकुर बोलछेन गुरु पदाश्रय आर स्वजाति स्निग्ध वैष्णवेर संग ए दुटा होले भजन क्रिया आरंभ होय साधन क्रिया माने गुरु काछे जा श्रवण करेछ शिक्षा लाभ करेछ तार मध्ये श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन इत्यादि नौटी नौथा भक्ति এই অনুষ্ঠানকে বুঝতে হবে। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবিধ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরাপরাধে নাম লইলে পায় পূর্ণ ধন। ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ, চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দর্শনম সখ্যম আত্মনিবেদনম, এই নৌভা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। সেটি কৃষ্ণ প্রেম দিতে পারে, আর তার মধ্যেও আবার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরাপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন, তার মধ্যে নাম সংকীর্তন শ্রেষ্ঠ। কেন? নাম আর নামই অভিন্ন, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের নাম অভিন্ন। এই জন্য যত রকমের ভক্তি অঙ্গ আছে তার মধ্যে মহাশক্তিধর এই কৃষ্ণ নাম, যে মহাপ্রভু বলেছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। কৃষ্ণ তার যাবতীয় শক্তি, যাবতীয় কৃপা, যাবতীয় সব সদ্গুণ তাতে নামেতে ভর্তি করে দিয়েছেন, অতএব এটা শ্রেষ্ঠ। এই ভজন ক্রিয়া যখন অনুষ্ঠান হলো, আবার এটা বুঝে রাখতে হবে যারা শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম বৈদিক ভক্তির আশ্রয় করে করছে, তাহলে তাহাদের এই নৌধা ভক্তি শ্রবণ কীর্তন অন্য রকমের। আর আগানুগার ভক্তগণের যে নৌধা ভক্তি অন্য রকম, তার কাছ থেকে কিছু পার্থক্য আছে, তার মধ্যে কৃষ্ণের নিবৃত্ত লীলা ইত্যাদি শ্রবণ কীর্তন এইসবগুলি হবে। এই বললেন যে নিষ্ঠিতা আর অনিষ্ঠা, ভজন ক্রিয়ার নিষ্ঠিতা অনিষ্ঠিতা। নিষ্ঠিতা ভজন কালে ভজনেতে কোনো শিথিলতা থাকে না, চিত্ত প্রসন্ন থাকে, আর ভজনে থেকে চ্যুতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ভজন থেকে গিরে যাওয়া এটি সম্ভব হবে, কিন্তু অনিশ্চিতা যে ভক্তি ভজন ক্রিয়া ভজন শিথিল থাকে, অভিনিষ্ঠা হয় না, চিত্ত স্থির হয় না, কি করব, এই করব না ওই করব, এইরকম সংশয় তাহার থাকে, এই অনিশ্চিতা ভক্তি ক্রমশ উৎসাহময়ী, ঘন্তরলা, দৃঢ় বিকল্প, বিষয় সংগরা, নিয়মক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিনী, ছ প্রকার। এইকে তিনি বলছেন অনিষ্ঠা ভজন দশা ভক্তি, ভক্তকে আচিত্ত ওর মন উল্লিখিত ছ প্রকারের দশা উদিত হইয়া ভজনের মধ্যে শিথিলতা আসে, চিত্ত সুপ্রসন্ন হয় না। এখন উৎসাহময়ী ঘন্তরলা, বলো
পরিজাতক মহারাজ আবি
This morning we heard, last night we heard, upon taking shelter of the feet of bona fide guru, then one will take the association of devotees who are Sajjana Shaya Smita. That means they are গোবর্ধনেও
আসবে আমাদের মধ্যে,
আর পরিক্রমা একসঙ্গে করা
taking diction, shiksha, the process of Bhagavad Bhajan, in one undertakes the nine limbs of devotional service, like Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Ajanam, Bhagavad the Dharma, Sanchas, Namasakitam, Yaparadha, Vahe, Haripamana. And of these nine processes of devotional service, the topmost is Nam Sankirtan. If it's performed without offense, it can give you Krishna prema. Therefore, why, of the 64 limbs of devotion, the nine processes, as spoken by Sri Prahlad Maharaj, are considered the best? But of these nine, why Nam Sankirtan is prominent? Because there's no difference between Nam and Nami. There's no difference between the name and the named. See, Krishna, his name, there is no difference. In fact, the Lord has given his own unlimited potencies in the name, as Mahaprabhu spoke in Shikshastikam, Nam Namakari Bahudo Niravasharvashams. Therefore, by practicing these nine names of devotion, especially Nam Sankirtan, this is called Bhajana Kriya. In Vaidhi Bhakti, these nine are prominent. And in Raghunuga Bhakti, these are practiced, but you remember the chanting of the leelas and the qualities of Krishna a little bit prominent.
In Vaidhi Bhakti and Vedanta Bhakti, both are Navabhita Bhakti is there, but both are not same. Vaidhi Bhakti, they are more different, and Vedanta Bhakti is more different from Vaidhi completely.
Therefore, after Bhajana Kriya comes Nishtha Bhajan. But before that, this is also in two divisions, Nishtha Bhajan and Anishtha Bhajan. Nishtha means fixed. The mind is very happy, steady, and because the mind is very pleased doing bhajan, it doesn't waver, it is not fickle, it is fixed. And of course, Anishtha Bhajan is the opposite of that. Bhajan, the mind is, because no taste is there so much, the mind is not fixed, the mind is fickle and meditates always on what to do and what to not to do, and one is disturbed by so many doubts and obstacles. This Anishtha Bhajan is of six types. Utsahanmai, Ganatharala, Yudhvikalpa, Niyamaksara, Tarangarangini, and Visaya Sangara. And we'll hear an explanation of these now. In this stage, the mind is not tasting anything, therefore the mind is flickering and wobbling like a jellyfish.
Can you explain that point about Nada Bhakti and Vaidhi and Raghunuga Bhakti?
In Vaidhi Bhakti and Raghunuga Bhakti, there is the same practice of the nine limbs of devotion, only there is a difference in mood between Vaidhi and Raghunuga. Externally they look like the same because Vaidhi Bhakti and Raghunuga Bhakti is both performing nine limbs of devotion, only internal mood is different.
Vichitri. Vaidhi Bhakti te Prahlad Maharaj ja bolchen. অসুল বালকগণকে ওই সাধারণ কথা শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদি হবে, আর রাগানুগাতে কৃষ্ণের অষ্টকালী লীলা ইত্যাদি এই সবগুলি তার বিলাসের কথা শ্রবণ করবে, কীর্তন করবে, তাহার বন্দনা করবে, স্তুতি করবে, আত্মনিবেদন করবে, ওইখানে এইটা
পার্থক্য। But in Raghunatha Bhakti, there's a speciality where one is specifically hearing, chanting, and remembering the eightfold pastimes of Krishna, the Astakali Lila, as well as Krishna's meeting with the gopis and the cowboys. There's some speciality there in the substance to be heard, chanted, and remembered.
এখন উৎসাহময়ী ভক্তি ক্রিয়া। এখন গ্রন্থকার শিল চক্রবর্তী মহোদয় দীক্ষার পরে গুরুপদাশ্রয় ইত্যাদি হওয়ার পরে সাধক যখন প্রথম ভক্তি ভজনের মধ্যে তৎপর হয় তখন তাহার প্রারম্ভিক অবস্থা কিরকম এইটা বর্ণন করছে। কিরকম ভাবতে, যেরকম ভাবতে কোনো ছাত্র ছোট্ট বালক স্কুলেতে গেল আর মাস্টার খুব আদর করে তাকে বসাইল, শুনোই দাঁড়বে, ব্যাঠিয়ে बैठिए बैठिए बैठ जाइए पहले। बहुत दिनों तक मिले नहीं है? मैं सोच रहा था जी आए नहीं, आपको मिलना चाहिए था। যেরকম হয় কোনো ছোট্ট বালক ছাত্র স্কুলেতে ভর্তি হল আর মাস্টার তাকে খুব প্রীতি সহকারে বসিয়ে দিয়ে একটা লাল বই দিলে, তার মধ্যে অ মানে আ চিত্র আছে, ই মানে ইমলি, ক মানে কবুতর, খ মানে খরগোশ, তার চিত্রকে দেখিয়ে দিয়ে প্রাচীন আসতে বেশ সুন্দর ভাবে ও আমি পণ্ডিত হয়ে গেলাম। বাড়িতে ফিরেই বলছে যে আমি পণ্ডিত হয়ে গেলাম, আমি সব কিছু শিখে গেলাম। ওই রকম হয় সাধকগণ যখন গুরু তাকে দীক্ষা দিলেন, হরিনাম দিলেন, তখন অত তাহার উৎসাহ হলো, 1,00,000 নাম আরম্ভ করে দিল, কিছুদিন করলো, তারপরে আবার তার ঘুম লাগলো না, আর মন লাগে না, কোনো রস পায় না, তখন ভজন শিথিল হয়ে গেল। প্রথমে উৎসাহ থেকে লাগলো আর পরে শিথিল হয়ে গেল যখন মাস্টার কিছু জিজ্ঞাসা করলো আর সে বলতে পারলেন, তার কান ধরে এক থাপড় দিয়ে দিল, বাস করতে করতে বলেছে আমি পণ্ডিত করতাম, তখন আর পড়তে আর মন লাগে না। তো এইরকম ভাবতে প্রথম সাধকগণের এইরকম উৎসাহময় থাকে, কিছুদিন ভজন করে আর তারপরে অনর্থগ্রস্ত, তো বহু রকমের অনর্থ, বহু রকমের কামনা বাসনা, এই জন্য ভজনে মন লাগে না। তাই এই প্রথম অবস্থার নাম হচ্ছে উৎসাহময়। তারপরে ঘন তরলা, ঘন তরলা মানে কি, কখনো ঘন আবার কখনো তরল, কখনো মন লাগে ভজনেতে উল্লাস হয় আর কখনো আর মন লাগে না, মন আর ভজনেতে হরিনাম করতে হরিকথা শুনতে তাহার রুচি হয় না, এর কখনো ঘন এবং কখন তরল। বলছেন শিল চক্রবর্তী ঠাকুর, ভক্তি সাধক ভজনের মধ্যে খুব উৎসাহ আর উদ্যমের বাদ তো কথা হলো, কথা বলা হলো, সে উৎসাহটা স্থায়ী থাকে না, শিখিয়ে রয়ে যায়। কেন, অনর্থ গজ গজ বিষয় চিন্তা হয়ে যায়। হরিনাম করতে করতে মন যে কোথায় চলে গেল, ভজন থেকে অনেক দূরে বিষয় চিন্তা লাগে, টাকা পয়সা চিন্তার মধ্যে লাগে, কারোর সঙ্গে বিবাদ হয়েছে কি মিত্রতা হয়েছে তার মধ্যে চিন্তা চলে গেল, অনেক কষ্ট করে কিছুক্ষণ পরে দেখলি আরে আমার মন তো এখানে নাই। এইরকম হতে কখনো উৎসাহ কখনো শিথিলতা হয়ে যায়। তাহাদের প্রারম্ভিক এটা কুতূহল মাত্র, উৎসাহ যে ওটা একটা কুতূহল। এই জন্য ছাত্রগণে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে অধ্যয়নের জন্য, যেরকম প্রথমে নবীন ছাত্রে খুব উৎসাহ আমি পণ্ডিত হয়ে গেলাম, আর পরেতে যখন কিছু আসে না গম্ভীর বিষয় তখন কান ধারণ এমনি এঠে দিয়ে থাপড় দিয়ে দিল, বস শিথিল হয়ে গেল। কবি কবি কখনো কখনো শাস্ত্রার্থের মর্ম বুঝে তখন ভারী আনন্দ উল্লাস হয়ে যায়, আর যখন কঠিন বিষয় এসে যায় শাস্ত্রার্থ বুঝতে পারে না, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে যদি থাকে তাহলে কুছ দিন মধ্যে এই অবস্থা কেটে গেলে ভজনের মধ্যে রুচি এসে যায়। তারপরে বলছেন বিরূঢ় বিকল্পা, বিরূঢ় বিকল্পা মানে কি অনন্তর আমি পরিবারের সঙ্গে থেকে ভজন করব না গৃহস্থ ত্যাগ করে দিয়ে বনেকে যে ভজন করব, কি করব আমি পরিবারের সঙ্গে থাকব, পুত্র কলত্র সব লোককে দীক্ষা হরিনাম দিয়ে গুরুর কাছে আর সকলে মিলে আমরা এক সঙ্গে ভজন করব, অথবা পুত্র কলত্র সকলকে ছেড়ে দিয়ে বিচ্ছেপ চিত্তে পরিবারের সঙ্গে থাকলে চিত্ত বিচ্ছেপ হয়ে যায়, মন এই দিকে ওদিকে চলে যায়, তাহলে গৃহস্থ আশ্রমকে ছেড়ে দিয়েই পুত্র পরিবারকে ছেড়ে দিয়েই ভজন করা ভালো। আচ্ছা আমি কি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে গেলে ভালো, ওইখানে একান্তে নির্জনেতে বসে ভজন করব, অথবা এখন সংসার যদি করতে হয় তো যুবাবস্থাতে সংসার থেকে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র সঙ্গে থাকি, আর পরবর্তীকালেতে যখন প্রৌঢ় হয়ে যাব বিষয় ভোগ নিব তারপরে যাব। আবার বলছে শাস্ত্রেতে কিন্তু বলা হয়েছে স্ত্রীকে তৃণ আচ্ছাদিত কুয়া, কুয়া মানে কূপ জ্ঞান করবে, এই জন্য ভক্তি ত্যাগী প্রৌঢ় অবস্থার মধ্যে অর্ধবায়ু 50,000 বছরের আয়ুতে মলবত সংসারকে ত্যাগ করে চলে গেছে, তাহলে স্ত্রীকে পরিবারকে কুয়া মনে করতে হবে, তার মধ্যে জল, তার মধ্যে জ্বলছে, আর তার মধ্যে যদি কেউ পড়ে তাহলে ওই রকম মরবে। অতএব গৃহস্থ আশ্রম বিশ্বাস না করে ও বৃন্দাবনেতেই যাই, নিশ্চিন্ত মনেতে ভজন করব। আবার ফের বিচার করে দেখো ভাই আমি তো বিবাহ করে নিয়েছি, পুত্র আছে ছোট ছোট, বাবা বুড়ো হয়ে গেছে মা বুড়ো, আমার তো এদের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে যখন বিবাহ করেছি, কিন্তু ভগবানের প্রতি কর্তব্য ভুলে যায় যে আমি ভগবানকে সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি কি ভগবান অনুগ্রহ করে জন্ম দিয়েছেন যে আমি ভজন করে ভুলে যায়। তখন বলছে এই সংসার যখন আছে আমার কর্তব্য আছে, মাতা বৃদ্ধ মাতা পিতাকে দেখা, পুত্রকে পালা, আমি ছোট ছোট আছে, পিতা মাতা মারা গেলে আমার ছেলেরা একটু বড় হয়ে গেলে তারপরেই যাওয়াই ভালো, এখন একটু থেকে সংসারের মধ্যেই আর ভজন করি। শাস্ত্রেতে লেখা আছে অতৃপ্ত অবস্থাতে সংসার ত্যাগ করলে ওই চিন্তন করতে 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 মরে আবার ফের ওই হয়। হরিণের চিন্তা করতে 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 হরিণ হয়ে গেছিলেন। ওই রকম হয়তো আমি সংসার ছেড়েও আর বৃন্দাবনে যাবো আর ওই বিষয়ে চিন্তা করবো তো মরে আমাকে ওই হতে হবে না ভাই, এটা ঠিক না। যেখানে থাকি না কেন মনকে ঠিক করে দিয়ে ওইখান থেকে ভজন করা ভালো। তো এইরকম কখনো সংকল্পতা হচ্ছে, কখনো বিকল্পতা, কখনো মনে করছে যে সে আমি ভগবত ভজন করি, ত্যাগ করে পরিবার, কখনো বলছে যে সে পরিবারের সঙ্গে থাকি। বলছে যে সে আচ্ছা এখন কোন রকম জীবন ধারণ করি আর সময় আসলো আঠো প্রহর ভজন করব, কিন্তু কিছু স্থির করতে পারছে না। বলছে যে যদি গৃহস্থাশ্রম থাকি তখন সাধুর সঙ্গে তো শ্রবণ কীর্তনের স্মরণ হবে না, ও ভালো যে কোনো ভাবে সংসার কিছুই স্থির করতে পারছে না। এবার এরই নাম হচ্ছে ঘন তরল বিরুদ্ধ বিকল্প।
There are six stages of Abhisiddha Bhajan, or unsteady devotion. The first is Utsahana Mayi. For example, a devotee takes Diksha, then he enters the first stage of devotion. Sri Vishnu Chakravi Thakur says, how is he at the time? He's like a small child who goes to school and enrolls there. At first, the teacher gives him so much affection and love, and he teaches him by picture book. A is for apple, B is for banana, C is for coconut. Then he learns it very quickly. Then he becomes very pleased. Oh, I am a pundit. Now I know everything. Nothing left to know. Just like when someone takes Diksha, in the first few days, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. They chant one life of Harinam, but then on the fourth day, headache, sleeping, no taste, then from one lap he goes to a complete lap of Harinam. His bhajan becomes completely finished. At that time, for example, the master may ask the student, okay, what's Zed? Then Zed is for Zucchini, but he doesn't know. Then the teacher pulls his ear, gives him a slap, then the boy is crying, I don't like school, this is useless, I'm not coming anymore. He becomes completely depressed. Then with the sadhak, after taking Diksha, he's so much enthusiastic. Then after a few days, because he is completely bound by unwanted desires, as well as he has the six enemies oppressing him, then his enthusiasm becomes thin. This is the second stage of devotion called Gana Tavala. Gana means thick, Tavala means thin. Sometimes he is very enthusiastic in practicing the limbs of devotion, another time he is not enthusiastic at all. Why one cannot be steady at this stage? This is because he is full of anattas. While chanting Harinam, he thinks of many things like map, accumulating money, or he heard of some marriage of a friend, he begins thinking of that. Again and again he tries to bring his mind back, but he is not steady. At this stage, his entrance into bhajan is still mainly by curiosity. Therefore, at first he thinks he's a great pundit, then when he comes to some difficult subject matter and gets some chastisement, he becomes depressed. When there is some easy subject matter, he becomes ecstatic, and when the subject matter is a little difficult to enter into, he becomes depressed. Therefore, Sri Vishnu Chakravarti Thakur says, in this stage, it's best to maintain one's patience and slowly enter into the subject matter of devotion. The third stage is called Buddha-vikalpa. At this stage, his mind is unsteady. He cannot think whether he should enter into grihastha life and remain there or renounce everything and become a tyagi, a renunciant. He thinks, I can stay with my family. I will take my mother and father and everyone to the feet of Gurudev. They can all take diksha also. And we can all perform bhajan like a transcendental Brady Bunch. Then after some time he thinks, or better, I should give up everyone and do bhajan alone. After all, if I stay with my wife and children, my mind will always be disturbed by so many anxieties. Will I leave my wife and children, go to Braj? Then I will stay alone and chant Harinam. But after some time he thinks, no, it's best to naturally enjoy this world, and in old age renunciation will come automatically, then I will go to Vrindavan. And again his mind comes, hang on. Shastra says that a woman is like a dry well covered by grass. And it looks very nice, but when you go to lie into it, you fall into that hole. Then he remembers the history of Bharat Maharaj. How he renounced everything at a mature stage, at the age of 50,000 years. His renunciation was called Malavatya. Like when you pass stool, you don't miss it very much. His passing, his renunciation was like that, very natural and easy. Then he thinks, with Bharat Maharaj, look what happened to him. He went to the forest and, thinking of a deer, he became like that. What will happen if I renounce my family and go to Vrindavan, but afterwards, because I've renounced at an immature stage, I come back to that thing, then my destination will be very bad. Then he thinks again, oh, my wife is very good looking, my children are very small, my mother and father are quite old and elderly, there is no one left to protect them. If I leave them, what will happen to them? Then the next minute his mind goes, oh, when I was in the womb I promised to Bhagavan that I would perform bhajan, but I have neglected that promise. This way his mind is constantly oscillating between renunciation and enjoyment. He thinks, if I give up everything in an immature stage, then I go back to enjoyment afterwards, then my destination will be very bad, like that of Bharat, who became a deer. In this way, his mind oscillates between sankalpa and vikalpa, accepting and rejecting different proposals. He thinks, well, I guess I can maintain my life anyhow, and afterwards in old age I can do bhajan. Then again, he thinks, in the Grihastha Ashram, there is no sadhu sangha, no chance for Shravan Kirtan. Thus his mind is constantly oscillating. This is called the third stage of Anisita Bhajan, Buddha Vikalpa.
Ei prakare Shravan Kirtan sambandhev utar sankalpa vikalpa uthe ki kakhono mone mone kore শাস্ত্রের মধ্যে তো ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবিধ ভক্তি, তার মধ্যে নাম সংকীর্তন সবসে শ্রেষ্ঠ, নাম নামই এক শাস্ত্রে বলছে। অতএব শুধু হরিনাম করব আর সব বাদ দিয়ে দিব। আবার সোচ্ছে আমি এই কীর্তন অঙ্গ হরিনাম সংকীর্তন করে করে আমি কৃতার্থ হইব। কখনো বলছে যে সে শাস্ত্রীতে সমরে সতাম প্রসঙ্গম বীর্য সম্বিদৌ ভবন তরিতর কর্ণ রসায়না কথা লিখা আছে, শ্রবণ বিনা তো হবে না কীর্তন, অতএব শ্রবণ করা উচিত। আবার কখনো অর্চনের মহিমা দেখে বুঝেছে আমি অর্জন করাই ভাব। এরকম ভাবতে সংকল্প আর বিকল্প এর মধ্যেও সে একটি ধার আসে। এই সৎসর্ম মধ্যে যদি তাহার থেকে উন্নত স্বজাতি স্নিগ্ধ আসে, রসিক তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের সঙ্গ হয়, তাহলে তাহার কল্যাণ হতে পারে। তাহলে বুদ্ধি স্থির হয়ে যে আর ভজনের মধ্যে লেগে যাবে। আমরা মথুরা পান্ডার বিদায় দিয়েছি, এখন এখানকার পান্ডা পাঁচ চার পাঁচ দিন আমাদের বিভিন্ন স্থানেতে যে মার্গদর্শন করেছেন দেখিয়েছেন, অতএব আপনারা সকলেই এক একজনকে যদি দেখায় তাহলে 100-200 টাকা দিবে, কিন্তু আমাদের এখানেতে 200-100 না, যার যত পারেন 10-5 টাকা পান্ডাকে বিদায়ের জন্য দিবেন, যাতে তাহাকে কালকে বিদায় দিয়ে তারপর আমরা গোবর্ধনে যাব। এরপরে আপনার ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা চারিদিকে প্রসাদ একত্র করে নেবেন। এরপরে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি এবং আচার্য শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ উপস্থিত আছেন, তার কাছে নিবেদন করি তিনি 10 মিনিট ভজনের মধ্যে কীরকম আমরা অগ্রসর হতে পারি, ভক্তি কীরকম ভাবেতে হবে, প্রেম কীরকম হবে, এইসব সম্বন্ধে কিছু বলবে।
The performance of Nam Sangeetan is best, then he fixes his mind to chant the Harinam. Then he hears the glories of Shravanam Kibati, Satamrata Sangam, Mamavirja Samvido. And his mind changes, he begins to put emphasis on hearing Harikata.
I will tell him.
Then again, somewhere else, he hears the glories of Archan, he begins doing that, worshipping the
deity.
This way, his mind constantly oscillates, even between the limbs of Bhakti. And with one should, what is the remedy? One should stay in the association of devotees who are more affectionate to oneself, inclined towards the same goal, and more advanced than oneself. By staying in this association, the mind will become steady. Also, for some time now, we've been roaming around Vrindavan, and we have yet to give any donation to our Mathura Pandit. If he was to take one person, it would cost some hundreds of rupees for 3 or 4 days. So if everyone can give something, 5 rupees, 10 rupees, as you like, the brahmacharis and sannyasis will collect it. And now I'm asking the present acharya of our Gaudiya Samiti, Pujapad, Srila Bhaktivedanta Prarajita Maharaj, to please speak something about how we can get Prema Bhakti and the process of bhajan. Go up and run to you.
সব ঠিক হ্যাঁ বাংলা বললেও হবে।
কৃষ্ণ ভক্তি প্রদীপ দেবী ধন্যবাদ।
So scripture has said, Yasya Prasaram Bhagavan Prasaram Yasya Aprasaram Nagadikudoti. Our first goal in life is to take shelter of feet of the bona fide spiritual master. We should know that when he is satisfied, then Bhagavan is satisfied. And when he is dissatisfied, then the Supreme Lord is most dissatisfied with the devotee. Therefore, the Guru is in such a position, even if Bhagavan is angry with that devotee, then Guru can plead on behalf of the devotee, "Oh, please Lord, he is my seva, he is my servant, please be merciful to him," and Bhagavan can give up his own anger. But if Guru is dissatisfied with someone, then no one can save him. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has advised us, Vaishnava Sevana Aranam Sankirtan Durisika Pavesi Krishna Charan. One should perform the service of the Vaishnavas and also chant the holy name of Sri Krishna. By doing these two activities, one will quickly achieve Sri Krishna. But we should understand that Guru is the most prominent of all the Vaishnavas. Therefore, it is our utmost duty to serve him in every respect.
Yeah.
ভগবানের প্রধান গুরুদেব ভক্ত স্বরূপে নামেন কৃষ্ণ সেই মানে পরম না এ গুরু ফায়দা পাবে আমার ফায়দা নাই আর গুরু আমাকে তোমার কি আছে আর গুরু পিতা নাই কি করে করলাম যেটা প্রিয় হয়ে গেছে আর গুরু পিতা নাই করে গুরু যদি মনুষ্য বুদ্ধি করা তাহলে কিন্তু আমাদের ভজন হবে না এই জন্যই ভগবান নিজেই বলছেন আচার্য মানবিনা
Namah Buddha Sutra, Namah Buddha Sutra, Namah Buddha Sutra,
Sarvadeva Mayaguru. One should never consider the spiritual master to be an ordinary mundane mortal being. Acharyam Vajanyam. One should understand the Acharya to be Krishna himself. One should have the faith by serving and pleasing Guru, we will achieve everything, because he is most dear to Sri Krishna. Sri Gurudev will place our service at the feet of Sri Krishna. And who is Guru? Ultimately, he is very dear, Manjari servant of Srimati Radhika, and he will offer us to the feet of Sri Rupa Manjari and Lita Sakhi. But it is not possible to reach that position by one's own direct efforts. One must serve the divine couple through Gurudev. And Gurudev will pray to the feet of the divine couple, "My sevak wants to serve you." Then Bhagavan will accept such a devotee.
আপনি বৈষ্ণব সেবা করতাম, গুরু হিসাব না, আর অন্যান্য বৈষ্ণবকে আদর করলাম না, ভালো হবে। গুরু কৃষ্ণ ভগবান, তিনি শরণ, তিনি শরণ হয় অমিত প্রাণ ভিন্ন চৈতন্যের নাম তো বলছেন, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনি শরণ, তিনি শরণে হয় অমিত প্রাণ ভিন্ন জ্ঞান। সুতরাং যেমন আমরা ভক্তি ভক্তি করবো, এরকম অন্যান্য বৈষ্ণবেও যদি ভগবানকে নির্দেশ পালন করে এবং